نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين الحمد لله ہم حنین دیکھ چکے طائف دیکھ چکے اسی طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واپسی ہے اور واپسی کے وقت عمرہ جو ایرانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ لوٹ آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر صحابہ کرام کو بھیجا بھی کئی بتوں کو توڑنے کے لیے بتوں کے خاتمے کے لیے اور کچھ ہم نے واقعات بھی اس میں دیکھے جیسے کہ حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم کا واقعہ اور اس کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اور واقعات بھی آتے ہیں جو آپ کی بک میں نہیں ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ بنو ثقیف کا ایک سردار تھا عروہ بن مسعود عروہ بن مسعود کا آپ نے نام پہلے بھی سنا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کے وقت جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا صلح کے لیے بات چیت کرنے کے لیے ان میں ایک عروہ بن مسعود تھا آپ اگر بک میں دیکھیں عمرہ حدیبیہ نکالیے جی بالکل جو بہت زیادہ امپریس ہوا تھا اور اسی نے وہ تاریخی الفاظ کہے تھے اپنی قریش کے پاس جا کے کہ اے قوم واللہ میں قیصر و کسرا و نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکے ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنے محمد کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں وہ کھنکار کے تھوکتے بھی تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا اور وہ شخص کو اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتا تھا جب وہ حکم دیتے تھے تو ان کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا کہ تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے یہ ایک کافر کا یعنی انالیسس تھا اور اس کے یعنی جو آئی وٹنس اس کا یہ ایک تھا اس سارے مناظر کا تو کافر گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے بچھے چلے جاتے تھے اور اس نے یہ بھی کہا کہ تعظیم کے سبب ان کو بھرپور نظر تک سے نہیں دیکھتے تھے صحابہ اور یہ ساری اس نے باتیں کہی تھی تو آپ کو اس سے یاد آیا ہوگا کہ وہ عروہ بن مسعود تھا اور یہ ثقفی تھا یعنی بنو ثقیف سے تھا بنو ثقیف یاد ہے نا طائف کا قبیلہ ہے تو حنین کی فتح کے بعد طائف کے علاقے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا لیکن بنو ثقیف جو تھے وہ بڑی ضدی تھے وہ کفر پہ قائم تھے آپ نے دیکھا نا پچھلی دفعہ میں ہم نے حوازن کی بات کی تھی کہ وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لائے پھر وہ اپنے الگ بچے وغیرہ لے گئے تھے واپس تو لیکن ثقیف جو تھا وہ ابھی تک کفر پہ ضد پہ قائم تھا اور ان کا یہ سردار تھا عروہ بن مسعود یہ مدینہ آیا اس نے اسلام قبول کیا اور واپس طائف چلا گیا نیا نیا اسلام قبول کیا تھا ایمان تازہ تھا اور جوش تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے کفر کے باوجود ڈٹ کے کلمہ توحید بلند کیا اپنے گھر کی گمٹی پہ کھڑے ہو گئے یعنی اوپر کے حصے میں وہاں پہ جیسے آپ کہیں بالکنی یا پر بلند آواز سے اذان دی ساتھ ہی چاروں طرف سے تیر برسنے شروع ہو گئے اور تیروں کی بوچھاڑ کے باوجود اذان دیتے رہے اور اسی میں وہ شہید ہو گئے تھے اسی طرح طائف کا سب سے متکبر اور بد دماغ جو سردار تھا عبد یالیل یہ ان تین میں سے ہے اگر آپ طائف کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سفر کیا تھا اور وہاں پہ جو تبلیغ کی تھی ان میں آپ دیکھیں جو تین بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام تھا یہ عبد یالیل اور کتنا زیادہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا اور انہوں نے انہیں بھائیوں نے اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا تھا और इन्होंने वो जो सारा सलूक किया था, अगर आप एक दफा पढ़ लें तो आपको फिर से याद आ जाएगा कि कैसा इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे मतलब हार्ड टाइम दिया था और जिंदगी का सख्त तरीन दिन बना दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो एक दिन इसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया था, और एक दिन अब ये अपने साथियों के साथ मदीना रवाना हुआ। शहर से बाहर मुगीरा बिन शोबा का पहरा था। ये मुगीरा बिन शोबा कौन है? यही है, याद है कि आपको मैं बताया था सुलह हुदैबिया के वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी को उरवा जो था वो बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये ऊपर मारते थे, ये भतीजे थे उरवा के। तो इनका भी और ये जो अब्दुल्लाह था, इन दोनों का जद्दे अमजद एक ही था। तो देखें एक पीछे से लीनिएज तो जाके मिल रहा है ना। तो मुगीरा ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदाब गुफ्तगू बताए और इसका खैमा मस्जिद नबी में नसब कराया ताकि अल्लाह के रसूल को करीब से देख सके और आपके अखलाक का मुतालिया कर सके। इस वफद में 6 लोग थे और सबसे कम उम्र उस्मान बिन अल आस सकफी थे। ये लोग अल्लाह के रसूल के पास आते जाते रहे। बल आखिर एक दिन अब्दुल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान बराह रास्त मुकालमा हुआ। अर्ज किया उसने कि आप हमारे साथ तहरीरी मुआहिदा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्त इस्लाम है वरना कोई मुआहिदा नहीं है। अब्दुल्लाह मुसलमान होने के लिए आया था। अल्लाह के रसूल ने एक मुद्दत पहले ताइफ से निकलते वक्त जो दुआ फरमाई थी ना, समझ लें उसकी कबूलियत के आसार जाहिर होने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी भी दुआ फरमाई थी जब मुहासरा खत्म करने लगे थे, और उस वक्त भी दुआ फरमाई थी। तो अब ये समझ लें आसार हो रहे हैं। तो उसने अब कुछ शरायत कुछ मुतालबात पेश किए। जिना की इजाजत चाहिए। फरमाया इस्लाम में इसकी नहायत सख्ती से ममानियत है, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। उसने सूदी कारोबार की इजाजत मांगी। इरशाद हुआ कि सूद कतन हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयात जो सूद के हराम होने पे वो तिलावत फरमाई। शराब पीने की फकत इस कदर रियायत तलब की कि ये गंदा मशरूब कभी कभी दवा के तौर पे हम इस्तेमाल कर लें। ये मुतालबा भी उसका रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसने कहा नमाज की छूट तो दे देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस दीन में अल्लाह की इबादत ना हो वो भलाई और खैर से खाली होगा। यानी आप इससे अंदाजा कीजिए अगर कहीं भी कोई छूट मिल सकती होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दे देते कि चलो इस तरह ये मुसलमान ही हो जाए। जैसे हम बहुत सारी चीजों पे बाज दफा कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं इस तरह से हो सकता है मुसलमान हो जाए, नहीं हमें इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, जो इस्लाम के असूल है जो प्रिंसिपल्स है उनसे नहीं हट सकते आप कि नहीं कोई बात नहीं अच्छा चलो इस तरह मुसलमान हो जाएगा। नहीं ये लोग तो अपने मजहब में शराब की आती हैं तो कोई बात नहीं एकदम ना बताओ। नहीं, जो बात वो पूछ रहे हैं हक बात बताएं कि नहीं जी ये चीज हराम है ये हराम ही रहेगी। फिर देखिए नमाज के ऊपर आज बहुत सारे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन नमाज से गाफिल है। यहाँ पे कह दिया गया कि जिस दिन में अल्लाह की इबादत ही नहीं है वो दीन है क्या? वो तो दीन ही नहीं है। तो अहले ताइफ का सबसे जो बड़ा बुत था ना लात था, उसकी बड़ी ताजीम की जाती थी और इन्होंने कहा कि भाई उसकी सलामती के लिए आप 3 साल की हमें मोहलत दे दें, मतलब 3 साल तक इसको प्लीज कुछ ना कहे लात को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया। फिर उन्होंने कहा 2 साल के लिए दे दें, फिर भी इनकार किया। फिर 1 महीने की इजाजत चाहिए मगर तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई और वाजे कर दिया गया कि अल्लाह ताला के अहकामात और शरीयत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, सौदेबाजी नहीं हो सकती। अब जो वफद आया था ये 6 लोगों का, उन्होंने अकेले में मशवरा किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शरायत तस्लीम करनी। इससे हमें ये पता चलता है कि देखें कॉम्प्रोमाइज करा के किसी को दीन के अंदर लेकर आना कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये चीज इनके लिए लीनियंट कर दी जाए, वो नहीं हो सकता। इस्लाम जैसे है वैसे ही कबूल करना होगा, वरना नहीं करना तो नहीं करो। कोई इस्लाम ये नहीं कहता कि इस्लाम झुक जाएगा ताकि तुम लोग राजी हो जाओ और फिर तुम्हें राजी करके फिर अब इस्लाम में लाया जाए। नहीं, इस्लाम वैसे का वैसे ही है, तुम्हें कबूल है तो ठीक है, नहीं कबूल है तो कोई मसला नहीं। अब कबूल भी कर ली उन्होंने शरायत और आखिर में अब्दुल्लाह ने अर्ज किया कि लात को ढाने का इंतजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त मंजूर कर ली, नविश्ता लिख दिया और उस्मान बिन अबिल आस सकफी को इनका امیر مقرر فرمایا, یہی جو سب سے کم عمر تھے, کہ وہ اسلام سیکھنے میں پیش پیش تھے, قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے رسول سے دین کی باتیں دریافت کیا کرتے تھے. اور عبد یالیل اور ان کے رفقا کو خطرہ تھا کہ جس طرح عروہ بن مسعود کو ان کی قوم نے قتل کیا, کہیں ان کے ساتھ بھی ان کی برادری یہی سلوک نہ کرے. تو انہوں نے واپسی پر اہل طائف سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا, پھر نہایت حکمت اور دانش سے ان کو اسلام کی دعوت دی. پہلے تو وہ جاہلیت جو تھی ان کے اندر مطلب بہت زیادہ تھی, وہ غالب آ گئی, مگر آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر دی. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کو لات کی کو گرانے کے لیے روانہ کیا گیا. تو اس طرح سے لات کے لیے بھی گرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرمایا, کسی بت کو بھی نہیں باقی رہنے دیا گیا تھا جہاں جہاں بھی حکومت پہنچ رہی تھی. تو آپ کو پتا نا, لات ایک بہت بڑا بت تھا, یہ مربع شکل کی چٹان تھی. لوگوں کا عقیدہ تھا کہ لات دیوی جو تھی وہ مرنے کے بعد اس راک کے اندر چلی گئی تھی. تو اس چٹان پہ انہوں نے ایک مکان بنا دیا تھا, جیسے اب آج بھی آپ دیکھیں یہ مندر کئی ہوتے ہیں وہ اتنی پہاڑوں کے اوپر ہیں, چڑھ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں پھر وہاں جا کے پوچھتے ہیں. تو لوگ بھی یہاں پہ بھی دور دور سے خیر و برکت کے لیے آتے تھے, اپنی اولاد کے نام بھی اس بت کے نام پہ رکھتے تھے. تو یہ بت جو تھا طائف شہر کے بالکل سینٹر میں تھا. تو یہی 9 ہجری میں سقیف کا وفد مدینہ میں حاضر ہوا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ ایک مسجد میں ان کے لیے, کہ صحابہ کو حکم دیا کہ ایک گوشے میں خیمہ لگوا دیا جائے, اب تاکہ یہ قرآن سنیں, صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھیں اور پھر اسلام لے کر آئیں. اسے آپ حکمت دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اتنے سال پہلے جو اس نے کیا تھا, اب اس کو دیکھتے ہی کیا زخم تازہ نہیں ہو گئے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ. اور اس وقت جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, اس وقت ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا تھا. اب تو پاور آ گئی ہے, پاور آ گئی ہے تو اب تم بھی آ گئے ہو, نہیں یہ نہیں فرمایا, کوئی تانے نہیں دیے, کوئی ایسی بات نہیں کی, ان کو موقع دیا, چانس دیا, قرآن سنیں, یہاں پہ رہیں, صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھیں تاکہ اسلام کو جان سکے. دشمن کے ساتھ ایسی ہمدردی, یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے, آپ بہت ساری مثالیں ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو ڈھانے کے لیے ان کو بھیجا, تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے, جو کہ ان کا تعلق بنو سقیف سے ہی تھا اور اسلام لانے سے پہلے یہ خود بھی بہت بڑے آدمی تھے, سردار تھے, تو انہوں نے لات کو ڈھانے کے لیے کدال اٹھا لی اور اپنے ساتھیوں سے چپکے سے کہنے لگے کہ میں ذرا ایک جھوٹ موٹ کردار ادا کروں گا اور آپ لوگوں کو سقیف کی جو حرکت ہے اس سے ہنساؤں گا. تو انہوں نے کدال کی ضرب لگائی, پھر خود ہی گر کے اپنے ہاتھ پاؤں زمین پہ, نا جیسے گر گئے زمین پہ اور مارنے لگے. طائف کے جو لوگ تھے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے, انہوں نے زوردار نعرہ مارا, خوش ہو کے کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے, دیکھو دیکھو ذرا اس کا حشر دیکھو, اسے دیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا. پھر وہ مغیرہ کے رفقا جو تھے, ساتھی تھے, ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کوئی اس کے قریب آ کر ہاتھ لگا کر تو دیکھے. اتنے میں حضرت مغیرہ ایک دم اچھل کے کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ تمہارا برا کرے, یہ بدذات دیوی صرف پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے, اللہ عز و جل سے عافیت مانگو, اسی کی عبادت کرو. پھر اس کے دروازے پر ضرب لگائی, اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اس کی دیواروں پہ چڑھ گئے, اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی شامل تھے, اور اس دیوی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, یہاں تک کہ بالکل اس کو خاک کر دیا. تو اس بت کا مجاور کہنے لگا اگر آپ لوگ اس کی بنیادیں کھو دیں گے تو وہ غضب ناک ہو کے آپ کو زمین میں دھسا دے گی. حضرت مغیرہ نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا مجھے اجازت دیں میں اس کی بنیادیں کھود کے رکھوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت مغیرہ نے اس کی بنیاد کھود کے مٹی باہر نکال دی, اس کا گارا بنا دیا, اس کا زیور لباس نکال دیا, اور سقیف کے لوگ یہ منظر دیکھ کے حیران ہکا بکا رہ گئے. تو پھر حضرت خالد بن ولید وہ زیور اور لباس اور یہ سب چیزیں لے کر مدینہ واپس ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یہ سب کچھ تقسیم کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے بتوں کو مٹا دیا. آج جزیرہ عرب میں دوبارہ مندر بن رہے ہیں, بت لائے جا رہے ہیں, ये जगह तो पाक करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से। अच्छा, फिर एक और वाक्य आता है, क्योंकि ये हम इस वक्त किस टाइम लाइन में हैं ये देख लें कि मुहर्रम 9 हिजरी में ये बनू तमीम की तादीब हुई थी, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि अगला पेज जो है गजवे तबूक, ये रजब 9 हिजरी का है। तो टाइम एग्जैक्टली टाइमिंग्स तो नहीं कुछ कह सकते, आगे पीछे हो सकते हैं वाकयात, मगर तकरीबन इसी साल का ये वाकया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने देखा कि सब बड़ी खुशहाली हो गई है हर तरफ। अब देखें, जब से खैबर फतह हुआ था, फिर मक्का फतह हुआ, फिर हुनैन हो गया, तो अब काफी आसानी हो गई, फराबानी हो गई है। तो उन्होंने भी कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि हमारा मतलब ना नफका बढ़ाया जाए, या जो भी मुतालबा किया होगा, यानी बढ़ाने का, कि जो हमें दिया जाता है खर्चा उसमें इजाफा किया जाए। अब ये वाकया क्या हुआ था, हजरत उमर से हजरत इब्ने अब्बास ने ये वाकया पूछा था, जिस वक्त हजरत उमर खलीफा बने थे, और अब्दुल्ला बिन अब्बास जो थे मुफस्सिर कुरान, ये फरमाते हैं कि मैं 1 साल तक इंतजार करता रहा कि कब मैं हजरत उमर से ये बात पूछूं। तो जब उनसे ये बात पूछी तो उन्होंने फरमाया कि हम कुरैश वो लोग थे जो औरतों पे हावी थे, यानी मक्का के जो लोग थे ना वो ज्यादा औरतों के ऊपर डोमिनेंट थे, लेकिन जब हम मदीना आए तो हमने देखा कि इनकी औरतें अपने मर्दों पे गालिब हैं। होता है ना, हर इलाके के कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ इलाकों में औरतें जरा ज्यादा मतलब आदमियों के सर पे सवार होती हैं, कुछ जगहों पे आदमी बड़े सख्त होते हैं, वो औरतों को बोलने तक नहीं देते। तो हमारे रीजन्स में भी कई इलाके ऐसे हैं, कई दूसरे बिल्कुल अपोजिट हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब हम मदीना आए तो इनकी औरतें गालिब थी, तो अब हमारी औरतें जब यहाँ आ गई हैं तो इन्होंने भी अंसार की औरतों से ये सब सीख लिया। तो मेरा एक घर हवाली में था, यानी मदीना से जरा बाहर निकल के, तो एक दिन मैंने गुस्से में अपनी बीवी से कुछ कह दिया तो उसने मुझे जवाब दे दिया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे जवाब कैसे दे रही हो, तो वो बोली कि तुम मुझे मना करते हो और तुम्हें नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी उनको जवाब देती हैं और पूरा पूरा दिन उनको छोड़े रखती हैं, यानी नाराज होकर बैठ जाते। तो यानी उन्होंने आगे से उनकी बात का ये जवाब दिया कि आप क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बीवियां ऐसे करती हैं। तो कहते हैं कि मैं उसी वक्त अपनी बेटी हफ्सा के पास गया, उससे पूछा क्या तुम अल्लाह के रसूल को जवाब देती हो, वो बोली हाँ। तो फिर पूछा कि क्या तुम पूरा पूरा दिन के लिए उनको छोड़े रखती हो, यानी नाराज भी हो जाती थी जैसे बात नहीं करनी, जैसे नाराजगी होती मियाँ बीवी के दरमियान, तो बोली हाँ। तो हजरत उमर ने फरमाया, फिर उनको डांटा, फिर फरमाया कि तुम इस गलत फहमी में, कुछ ही खुश फहमी में ना रहना अपनी साथी की वजह से, कि वो कई चीजें कर लेती तो तुम भी कर सकती हो, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, यानी हजरत आयशा की तरफ इशारा था। इससे हमें पता चलता है कि देखिए मियाँ बीवी के अंदर जो एक रिश्ता होता है ना, बहुत ही यानी फ्रैंक रिश्ता होता है। अब कोई और ऐसा करता कि पूरा दिन के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना करे तो कुफर में दाखिल हो जाएगा, लेकिन जब मियाँ बीवी होते हैं तो वो एक नेचुरल बात होती है। और ये हमेशा याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम या उम्महातुल मोमिनीन, जितने भी आप वाकयात पढ़ते हैं और आज के भी हम देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि सभी इंसान थे। जो हमारे जहनों के अंदर होता है ना कि वो सुपर नेचुरल कोई मखलूक थे, कोई ऐसे थे कि बस उनके अंदर इंसानों वाली कोई बात ही नहीं थी, वो बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इंसानों वाली बातें। तो चूंकि उनकी बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ थी, तो वो फौरन भागे हुए गए और जाके उनको जरा फिक्स करने की कोशिश की कि ये नहीं तुम कर सकती, और अगर तुम्हें कोई चीज की जरूरत भी हो तो उनसे ना कहना, मुझे आके कह दिया करना, मेरे पास कह दिया करना। तो अब यहाँ थोड़ा सा ये बात पता चलती है, फिर उसके बाद ये हमें पता चलता है कि हजरत उमर ही बयान फरमाते हैं कि मैं और जो मेरा साथी थे दोनों बारियां लेते थे। अब ये वाला जो वाक्य मैं आपको बताने लगी हूं, इससे पता चलता है कि ये तबूक से पहले का वाक्य है। तो फरमाते हैं कि हम दोनों बारियां लिया करते थे। किस तरह बारी करते थे कि यानी एक अंसारी इनके साथी थे जो उनके हमसाए भी थे, तो एक दिन वो काम काज किया करते थे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इल्म लेते थे, दूसरे दिन ये काम की काज किया करते थे और वो जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म लेते थे, जो जिस दिन इल्म लेता था उस दिन रात को वो दूसरे को सिखाता था। ठीक है, तो यानी उन्होंने देखिए कितना अच्छा इस तरह से इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि कोई जॉब ही ना करें, कोई कमाई ना, कुछ भी ना काम काज करें और बस सारा दिन वहां बैठे रहें, तो ये भी नहीं हो सकता था। उन्होंने अपने घर भी चलाने थे, प्लस इल्म का इतना शौक था उनको कि इस तरह से टर्न्स लेते थे। तो क्या फरमाते हैं, इसी जमाने में हमें शाहे गसान का खतरा लगा हुआ था, यानी कि वहां से हमला हो जाएगा। हमें बताया गया था कि वो हम पर हमला करना चाहता है और इसके डर से हमारे सीने भरे हुए थे। एक रोज अचानक मेरा अंसारी साथी दरवाजा पीटने लगा और कहने लगा, खोलो खोलो। मैंने कहा, क्या गसानी आ गए? अब ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं तबूक के इसमें आपको बताऊंगी ये बात। तो मैंने कहा, क्या गसानी आ गए? उसने कहा, नहीं बल्कि इससे भी बड़ी बात हो गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। अब ये इतनी सोचे बड़ी बात थी कि यानी ये भी छोटी बात है कि वो गसानियों का आना, अनेक जिनकी तरफ से खतरा था, जंग से भी बड़ी बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिए। ये तो बहुत ही, और एक रिवायत में आता है कि तुम्हें फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था और मैं घबरा के वापस बाहर आया, क्योंकि दरवाजा वो जोर जोर से पीट रहा था। और मैंने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, क्या गसानी आ गए? उसने कहा, नहीं बल्कि इससे भी बड़ा हादसा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। तो अब ये फौरन यानी फजर के वक्त में निकले हैं और गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तो आप वहां पे नहीं थे, हजरत हफ्सा की तरफ गए, तो वो रो रही थी। तो कहते हैं, मैंने पूछा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है तुमको? तो वो बोले कि मुझे नहीं पता, मगर वो बाला खाने में चले गए। अब वो एक मस्जिद नबवी के अंदर ये एक जगह थी, एक कमरा था जो बाला खाना जैसे कि मतलब एटिक समझ लें, ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर एक कमरा था। तो फरमाते हैं कि मस्जिद में लोग जमा थे और लोग परेशान थे, और अफवाह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दिया। फरमाते हैं, मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास गया, ऐ अबू बकर सिद्दीक की बेटी, क्या तुम इस इंतहा को पहुंच गई हो कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को छोड़ के बाला खाने में चले गए? तो वो भी हजरत अबू बकर की बेटी थी, तो उन्होंने कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, तुम जाओ जाके अपनी बेटी की फिक्र करो। यानी अब मुझे कहने से बेहतर है कि वो अपनी बेटी को तो पूछो, उनका कसूर है ज्यादा। दूसरी रिवायत में ये आता है कि फिर उसके बाद वो हजरत हफ्सा की तरफ गए और उनसे ये बात पूछी थी। तो जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बाला खाने में हैं, तो वो मस्जिद नबी आए और देखा कि वहाँ पे सब लोगों का यानी बुरा हाल हुआ हुआ है, सब लोग परेशान हैं। इससे ये पता चलता है, देखिए सारी जगह खबर फैल चुकी थी, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि हाँ ये कितनी बुराई की बात थी, लोग क्यों ऐसी बात एक से दूसरे को पहुंची और क्यों लोग इसके ऊपर परेशान हैं या नहीं है, क्योंकि एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुतल्लिक था, दूसरी ये भी बात है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उसमें अगर कोई सालसी बनता है या कोई आगे आके इस चीज को फिक्स करने के लिए आगे आता है, तो इसमें कोई हरज की ऐसी बात नहीं होती, और ना ही इसमें कोई कसूर की बात है कि हो देखो ये कैसे लोग थे कि जिनकी कभी ऐसी भी हो सकता था कि आपस के अंदर कोई नाचाकी हो गई हो या इस तरह, ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसी नहीं है बात। जहाँ पे देखिए दो लोग इकट्ठे रहते हैं, और यहाँ पे तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थी, तो जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हों वहाँ पे ऐसे मामलात हो जाया करते। और 9 बीवियाँ ये कौन थी? 5 कुरैशिया थी और बाकी थी दूसरी भी गैर कुरैशी भी थी। तो इनके नाम आप लिख लें कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हजरत आयशा, हजरत हफ्जा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत सौदा और हजरत उम्मे सलमा थी, और जो गैर कुरैशी थी वो हजरत सफिया बिनते हुई बिन अख्तब, आपको पता है, हजरत मैमूना बिनतल हारिस, हजरत जैनब बिनते जहश, हजरत जुवेरिया बिनतल हारिस, ये थी। तो ये खवातीन थी जो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी, और इनमें पेश पेश हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, जो इस मुतालबे को लेके यानी पेश पेश थी। लेकिन सारी ही अजवाज मुतहरात ने मिल के ये मुतालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा था, यानी इसमें सब का कंसेंसस था, सब एक थी कि हमें हमारा खर्चा बढ़ाया जाए। अब आजाद उमर ने जब ये सारा देखा कि इस तरह से लोग परेशान हैं और ऐसे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला कि आप उबाला खाने में, तो फरमाते हैं कि मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे गुलाम खड़ा हुआ था, मैंने उसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लो, मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो अंदर गया और वापस आया और उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खामोश हैं, इजाज़त नहीं मिली। कहते मैं वापस आ गया, इसी तरह मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं, अफवाह उड़ी हुई है, पता नहीं तलाक हो गई है, नहीं हुई है, क्या हुआ है। तो इससे पता चलता है लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी इतनी ज्यादा थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात के ऊपर परेशान है, उससे सब लोग परेशान थे। अब इनसे तो चैन तो नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, पता तो चले। कुछ देर बाद फिर गए, दूसरी दफा जाके फिर गुलाम से कहा कि इजाजत लेकर आओ, तो फिर वो वापस आया कि इजाज़त नहीं मिली। फिर तीसरी दफा फिर गए, फिर ये भी आता है कि ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा ये भी हज़रत उमर ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद सोच रहे हैं कि मैं अपनी बेटी हफ्सा के लिए हूँ, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहता हूँ, तो इस दफ़ा इजाज़त मिल गई। फरमाते हैं हज़रत उमर के जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ पे चमड़े की एक मश्क सी होती है ना, लेदर बैग सा जिसमें पानी होता है डालते थे, कुछ जौ थे और एक बोरिया सा था जो बिछा हुआ था। तो फरमाते हैं या रसूलल्लाह, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इस पर हजरत उमर ने ऊंची आवाज में फरमाया अल्लाह हू अकबर। इसका मतलब कोई अच्छी खबर सुन के आप नारा तकबीर जो हमारे यहाँ करते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। तो बोले या रसूलल्लाह, हम तो अपनी औरतों पे बड़े हावी थे जब हम मक्का में थे, ये बस मदीना आ गए हैं तो देखा यहाँ पे हमारी औरतें इस तरह करने लगी। वही बात जो मैंने आपको सारी बताई है पहले। और मैं तो इवन हफ्सा के पास गया और मैंने उसको भी कहा कि कोई ज्यादा खुशफहमी में ना रहना तुम अपनी शौकन की वजह से और इस तरह से। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। तो उसके बाद हजरत उमर ने और कुछ बातें जारी रखी, कुछ और फरमाया कि मेरी बीवी इस तरह से मेरे आगे जवाब दे रही थी और ऐसे कर रही थी और मैंने उसको ऐसे कहा। तो मतलब कुछ हल्की फुल्की ऐसी बातें की कि जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर दें। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि मैं बैठ जाऊँ, अभी तक बैठे भी नहीं थे, मैं बैठ जाऊँ नहीं, इतने ज़्यादा वो खुद भी परेशान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, इधर उधर देखने लगे। उस वक्त का वो वाक्य आता है जो आपने कई दफा सुना होगा कि कमरे में क्या था। उस वक्त ये नजर दौड़ाई ना इर्द गिर्द, देखा कि क्या है कमरे के अंदर, कि यानी एक वो चमड़े का पानी की मश्क है, एक ये बोरिया है, छोटे थोड़े से दाने पड़े हुए। तो फरमाया या रसूल्ला, अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते, आपको आपकी उम्मत को आसानी दे, कैसरों किसरा देखें, कैसे इतने इतने माल और दौलत और आसाइशों में हैं जबकि वो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, और आप इस तरह इस हाल में हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के ऊपर उसके ऊपर लेटने की वजह से, जो बोरिया सा था उसके ऊपर लेटने की वजह से, चटाई की वजह से निशान पड़ चुके थे। थोड़ा सा तुमर ये देख के रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रोते हो? फरमाया कि ये देख के वो इतने तायुशात में और आप इस तरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सीधे होके बैठ गए। फरमाया इब्ने खत्ताब, क्या तुम अभी भी शक में हो? क्या तुम मुतमईन नहीं हो? अल्लाह ने हमें उन पर तरजीह दी है आखरत में और उनको ये दुनिया दे दी है, यानी तुम ये नहीं देखते कि उनको दुनिया में ही भलाई मिल गई है, हमारे लिए अल्लाह ने आखरत में रखी है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी सादगी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय चॉइस भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी आपको कि आप या तो नबी बादशाह बन के रहें या फिर अब्द रसूल बन के रहना चाहेंगे। जिब्राईल अलैहि सलाम एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो एक फरिश्ता उतरा, जिब्राईल अलैहि सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह, ये फरिश्ता आज तक कभी नहीं जमीन के ऊपर आया, आज पहली दफा जमीन पर आया। और इस फरिश्ते ने आके क्या फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक सवाल पूछा है आपसे कि आप क्या बादशाह नबी बन के रहना चाहते हैं या आप क्या अब्द रसूल बन के रहना चाहते हैं? अब देखिए बादशाह कितना दुनियावी तौर पे देखा जाए तो बादशाह का स्टेटस सबसे हाईएस्ट है और अब्द गुलाम का स्टेटस सबसे लो है दुनियावी तौर पे, लेकिन बार क्या रसूल जो होता है वो नबी से बढ़ के होता है, क्योंकि तमाम पैगंबर नबी हैं लेकिन तमाम पैगंबर जो है वो रसूल नहीं है। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। रिसालत बहुत ऊंची चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्द रसूल होने को चूज किया ताकि उम्मत को हमेशा के लिए एक लेसन मिल जाए। कोई ये ना कह सके हमें क्या था, हमारे नबी के पास तो बड़ी आसाइशें थी, उन्होंने अगर कोई काम कर भी दिया तो कौन सा मुश्किल था। असल तो हमारे पर मुश्किल हैं, हम कैसे इन हालात में करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सख्त हालात में भी काम करके दिखाया। और इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए आज भी लोग कहते हैं ना, अगर मुसलमान इतने हक पे हों तो उनके हालात ऐसे क्यों हैं, वो ऐसे क्यों हैं। ठीक है, बादशाहों की नहीं मैं बात करें, आम आवाम की बात करें कि चाहे जो भी है, तरक्की में दूसरे लोग बढ़ के हैं और आवाम की हालत भी दूसरों की, हमारे मुसलमानों मुल्कों में जो उनके आवाम की हालत है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के वो लग्जरीज में रहते हैं। तो क्या वजह है, इसके ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि इस्लाम की वजह से ऐसा है या इस्लाम कसूरवार है इसका कि ये गरीब है और ये अगर हक पे होते तो फिर ये ऊपर क्यों ना होते। ये हदीस हमें अच्छी तरह समझा देती है कि हक और नाहक का पे होने का क्राइटेरिया, उसको जज करने का क्राइटेरिया ये नहीं है कि किसके पास माल कितना है और कौन दुनियावी तौर पे कितने ऊंचे उसके ऊपर आसाइशों में है, बल्कि ये पैसा होना, माल होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हक पे है या नहीं है। ये ना किसी की कामयाबी की दलील है, ना किसी के हक या ना हक पे होने की दलील है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक फिर अपनी बीवियों के पास नहीं आए थे, और 29 डेज जब पूरे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर के आए, तो सबसे पहले बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ गए और उनको फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इख्तियार दिया और ये फरमाया जो सूरह अहज़ाब में आयात आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक बात तुमसे जिक्र करने वाला हूं, तुम जल्दी ना करना जवाब देने में, अपने माँ बाप से मशवरा करके मुझे जवाब देना। और वो क्या है कि ये जो आयात आई कि ए नबी अपनी बीवियों से कह दें, अगर तुम्हें तुम्हारी मुराद दुनिया की जिंदगानी है और जीनत दुनिया है तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूं, और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और रसूल और आखरत का घर है तो यकीन मानो कि तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत जबरदस्त अजर रख के छोड़ा हुआ। तो ये 28 और 29 आयात उतरी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लेके उनके पास गए और फरमाया कि ये आप अपने वालिदैन से मशवरा कर देना और फिर मुझे बता देना। तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, या रसूल्ला इसमें माँ बाप से मशवरा करने की कौन सी बात है, मुझे अल्लाह पसंद है और उसके रसूल पसंद है और आखरत का घर पसंद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने जब दूसरी बीवियों की तरफ भी जाने के लिए उठे तो इन्होंने दरख्वास्त की, या रसूल्ला आप अपनी किसी और बीवी को ना ये बताइएगा कि मैंने ये चूज किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे छुपाने वाला बना के नहीं भेजा, यानी वो चाह रही थी कि अगर उन्होंने कुछ और चूज करना तो कर लें। जाहिर है ये भी एक नेचुरल बात है। देखिए जब एक आदमी की बहुत सी बीवियां होती हैं तो आपस के अंदर ये चीज आ ही जाती है क्योंकि सभी उससे मोहब्बत करती हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत करने की भी दलील है। देखें जो लोग बेचारे हर वक्त इसी कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली थी वो तो छोटी थी, तो ये देखें उनकी यानी एक लाइफ टाइम में ही ये चॉइस भी उनको मिली थी। या शायद लोगों को भूल जाता है कि ये चॉइस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी तलाक की, कि आपके पास चॉइस है, तलाक का हक दे दिया था बीवियों को कि अगर चाहें तो खुद को तलाक देकर फारिग हो जाएं। ये भी एक चॉइस होती है इस्लाम में कि अगर शौहर चाहे तो अपनी बीवी को यह हक दे सकता है कि तुम चाहो तो तलाक कर लो अपनी, यानी तलाक का हक मैंने तुम्हें दे दिया, अपने लिए तलाक ले लो और तुम अलग हो जाओ और चाहो तो साथ रहो। तो बाज दफा हमारे मुल्कों में भी ये निकाह के फॉर्म में भी ये कर दिया जाता है हमेशा के लिए कि औरत भी तलाक कर सकती है अपने लिए, दे सकती है अपने लिए। तो ये हक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यानी इख्तियार दिया था अपनी बीवियों को, इनमें से कोई भी चाहती तो अलग हो सकती थी, तलाक कर सकती थी अपने लिए, यानी उनको चॉइस दे दी थी, ये उनके पास हक दे दिया था, इख्तियार दे दिया था उनको लेकिन बताएं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना उनको कोई बुरा लगता होता तो वो खुद ना तलाक ले लेती इस वक्त, जबकि उनके पास चॉइस थी, और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ मशवरे करने को भी नहीं जरूरी समझा कि क्यों मैं उनसे मशवरा करूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुन के खुश हो गए थे, और तमाम अजवाज मुतहरात ने यही जवाब दिया था फिर कि हम आपको इख्तियार करते हैं। उन्होंने कोई इस्तखारे भी नहीं किए, कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम इस्तखारे करके बताएंगे, ये भी नहीं कहा। नहीं, जो एतराजात करते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो कितनी ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को अपना ऑनर समझती थी। और ये बातें हम तक अल्लाह ताला ने पहुंचाई हैं, इनमें हिकमत है कि हमें ये पता चले कि देखें कहीं पे भी ऐसे मसाइल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक पार्टी कोई बुरी ही हो तो फिर है, नहीं, जो अच्छे नेक लोग हजरत जैद और हजरत जैनब की आपस में नहीं हो सकी थी, बन सकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा जिंदगी में भी बाज दफा ऐसे मसले है, लेकिन ये नहीं था कि रोज रोज के कोई ऐसी चीजें हो रही हो, मगर बाज दफा हो जाता है। और उन मसलों को कैसे रिजॉल्व किया जाए ये भी हमें यहाँ पता चलता है, कि इसमें यहाँ पे हमें इला का पता चला। इला क्या होता है, यानी जब कोई झगड़ा हो जाए तो कुछ देर के लिए एक दूसरे से यानी अलग हो जाना। अब ये नहीं कि बीवी को उसके मेके भेज देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को नहीं भेजा, खुद अलग हो गए, खुद घर से निकल गए। तो इससे पता चलता है कि खुद आदमी या तो अपना बिस्तर अलग कर ले या थोड़ा थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार करें, ताकि दोनों को ठंडे दिमाग के साथ सोचने का मौका मिले, दोनों को गौर करने का मौका मिले कि मैंने क्या किया, मेरी गलती कहाँ है, या दूसरे के ने क्या किया। उस सारे को जब साथ रहते हैं और बिला वजह एक यानी नोक झोंक चलती रहती है, एक दूसरे के साथ लड़ाई चलती रहती है, तो दोनों पार्टीज को मौका नहीं मिलता कि वो आपस में मतलब सोच सकें, मतलब उनको थोड़ा कोई टाइम मिले, एक दूसरे के सर पे सवार रहते हैं, तो फिर मजीद बात बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला फरमाया और 1 महीने के लिए फरमाया, लेकिन ये 4 महीने से ज्यादा जायज नहीं है। हाँ, मगर कितना भी ड्यूरेशन टाइम का आदमी खुद रख सकता है कि इतनी देर हम सोचने के लिए लेते हैं, और उस वक्त में सालिसी भी यानी जो लोग इर्द गिर्द के हैं वो भी कोशिश करें कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाए और आपस में इनकी सही हो जाए सारी बातचीत। ये बहुत जरूरी है, बाज दफा बहुत जरूरी हो जाता है बाज केसेस में किस तरह लग हो जाए। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ये क्या बात हो रही है, एक दूसरे दूसरे के तक बात हो रही है, और ये बातें आगे क्यों बढ़ी और क्यों बाहर निकली और ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। जैसे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत जब लगी थी तो उसको पसंद नहीं किया गया कि आगे से आगे बात क्यों की गई, वो एक अलग बात है। ये वाली बात भी सब में फैल ही गई है, सबको पता चल गया कि ये मसला हो रहा है। इसका मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं कि कोई गुनाह की बात हो जाती है, अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान कोई बात ऐसी हो गई है, कोई अनबन हो गई है, तो पता नहीं क्या हो गया, ये कितना यानी किसके पार्ट में कसूरवार हैं, और हम वो कसूर ढूंढने शुरू कर दें और बुरा भला कहना शुरू कर दें, वो बल्कि ये हो सकता है, ये कोई ऐसी ये नॉर्मल बात है। हाँ, रोज रोज नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन कभी कभी नाराजगियां भी हो सकती हैं, कभी रूठना भी होगा, कभी मनाना भी होगा, कभी ये सब चीजें हम इंसान हैं और इंसानों में होती हैं और चलती हैं, और कभी औरत कभी जवाब भी दे देती है, ये भी चीजें चलती हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा और कौन सा वाक्या हुआ था, एक और वाक्या हुआ था जो यहाँ पे बयान करना जरूरी है, क्योंकि ये हम अब 9 हिजरी में आ गए हैं, लेकिन वो 8 हिजरी ज़िलहज्जा का वाक्या है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारिया किबतिया के बतन से इब्राहिम अता फरमाए। मारिया किबतिया, आपको जैसे याद होगा कि मकोकस जो था उसने 2 लौंडियां भेजी थी, एक मारिया किबतिया और एक सीरीन थी, और बहुत से तहाइफ भी बेचे थे, और दुलदुल नाम का खच्चर भी भेजा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल भी फरमाया था। अब ये जो 2 बहनें थी इनमें से एक सीरीन जो थी उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसान बिन साबित को दे दिया था, और मारिया किबतिया को अपने हरम में दाखिल फरमाया था। अब इसके अंदर ये एतराजात करना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों लौंडी रखी, ये क्यों हुआ, ये देखें ये उस जमाने के नॉर्म थे। आप आज के जमाने की कई और चीजें नॉर्म है, अब इसके ऊपर एतराज करना या कोई इसका जवाब नहीं बनता। इन बातों को लेके चाहे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज की बात हो या ये बात हो हजरत मारिया कितिया की, तो ये सोचना चाहिए सबसे बड़ी एक बात को जहन में रखें कि उस जमाने में जो कुफार थे वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे पीछे पड़े हुए थे कि जरा सी बात को नहीं छोड़ते थे, कि जाने नहीं देते थे, और इधर भी आके मुनाफिकीन और उधर कुफार, और वो कोई मौका नहीं हाथ से उन्होंने जाने दिया। आपको काहिन भी कहा, जादूगर भी कहा, कहीं और भी तरह तरह के अलकाबात दिए, कहीं शायर कहा, कहीं कुछ कहा, और कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद फौत हुई तो अबतर कह दिया, और इस तरह की बहुत सारी, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने एक छोटी उम्र की लड़की से शादी की या एक लौंडी को क्यों रखा इन्होंने, या आपने कभी सोचा? इसलिए कि वो जमाने के नॉर्म थे, जैसे आज के जमाने की नॉर्मल बात है एक शादी करना, उस जमाने में कोई इसका सोच ही नहीं सकता था कि एक शादी के साथ कौन रह सकता है। तो हर एक वक्त के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, इस चीज को समझना चाहिए हमें। जैसे कि पुराने जो पैगंबर थे, इवन आप देख लें दाऊद अलैहिस्सलाम, उनकी 100 बीवियां थी, उसके अलावा उनकी लौंडियां और बेहिसाब कई 100 थी लौंडियां, सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी भी 1,000 से ऊपर कई बीवियां और लौंडियां मिला के थी, तो अब इस चीज को क्या कहा जाएगा? वो भी अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनकी भी उतनी इज्जत करते हैं, हम उनके ऊपर कोई बात नहीं करते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लौंडी ही थी हजरत हाजरा, एज लौंडी दी गई थी उनको, तो जब हम उनके ऊपर नहीं एतराज करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी नहीं एतराज जायज है कि कोई भी उठ के ये बात कहने लगे। तो इसलिए इन चीजों को समझना चाहिए कि ये उस जमाने के कस्टम्स थे, ऐसे ही था उस जमाने में। अब इस मसले को उछालना चाहें तो अब क्या कर सकते हैं कि कोई इन्हीं मसलों को लेके बैठ जाए पर कैफ। लेकिन हजरत मारिया कबतिया जो थी वो ईसाई थी पहले, फिर उसके बाद वो मुसलमान हुई थी, लेकिन ये कोई टाइम नहीं पता चलता कब मुसलमान हुई थी। पर कैफ उनको महातुल मोमिनीन में से नहीं हम कह सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे निकाह नहीं हुआ था। अब इसके ऊपर भी किसी को इतराज नहीं करने की जरूरत, क्योंकि पहले वक्त में लौंडियां भी रखी जाती थी ऐसी, को ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो यही एक लौंडी थी, बाकियों की तो और बहुत सारी होती थी। अब 8 हिजरी जुलहज्जा में इब्राहिम पैदा हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई थी इनकी पैदाइश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद में आए और आपने सहाबा से फरमाया कि पिछली रात मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम अपने जद्दे अमजद इब्राहिम के नाम पर रखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्चे ने मारिया कबतिया को इनको आजाद कर दिया। यानी अब यानी क्या होता था कि उस जमाने में जो लौंडी जिसके हाँ बच्चा पैदा हो जाता था उसके मालिक का, तो वो उम्मुल वलद कहलाती थी। यानी अब वो लौंडी ना तो बेची जा सकती है, ना किसी को तोहफे में दी जा सकती है, और वो आजाद हो जाएगी जिस वक्त उसका मालिक फौत होगा। और वो बच्चा जो होता था उसको बाप का नाम मिलता था, बाप की विरासत मिलती थी, और उसको तमाम हकूक वैसे ही मिलते थे जैसे कि एक उस बच्चे को मिलते हैं जो किसी बीवी से पैदा होता था। उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को दूध पिलाने के लिए बहुत सारी औरतें आगे आईं, तो एक अंसारी औरत को रजात के लिए चुना गया और उसका माहाना खर्च भी रखा गया। ये थी थोड़ी सी बात इस चीज के ऊपर कि, और वो क्योंकि इब्राहिम उनकी वफात तकरीबन वो 1.5 साल के थे जिस वक्त हो गई थी, इसलिए हम इंशाल्लाह ताला वो उस वक्त ही देखेंगे जिस वक्त उनकी वफात के ऊपर हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं आगे, आप गजवा तबूक निकाल लीजिए, पेज नंबर 324 है मेरे पास, रजब 9 हिजरी। तबूक जो जगह है वो मदीना से 778 किलोमीटर पर है, ठीक है। इस जंग का नाम तबूक भी है और जैशुल उसरा भी है। जैशुल उसरा इसकी वजह क्या है इसका नाम होने की, ये अभी हम आगे बात करते हैं। पहले ये देख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी गजवा था, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गजवे में हिस्सा नहीं लिया। तबूक एक चश्मे का नाम था, उससे तबूक ये नाम है, और जैशुल उसरा क्योंकि ये बहुत ही सख्ती वाला सफर था, इसमें जंग नहीं हुई थी मगर इसके बावजूद ये जंगों से भी ज्यादा, लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था जो सफर था इसका, है, यानी इससे अंदाजा कर लें कि बा सहाबा मरने के करीब पहुंच गए थे इसमें। और ये इसकी, चूंकि इसका बहुत ज्यादा तबूक का जिक्र आता है, आप बहुत दफा तफसीरों में भी देखते हैं, खास तौर पे सूरह तौबा, आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के आएंगे सब लोग सूरह तौबा, ठीक है, उसका तर्जुमा आपने पढ़ना है, तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि उसमें सारा तबूक का वाक्य है। और इसी तरह और सीरत के कई वाक्यात में तबूक का जिक्र देखते हैं, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट गजवा था इसी लिहाज से कि इसमें काफी सारे इंसिडेंट्स हुए थे। और समझ लें कि अल्लाह ताला ने टेस्ट कर लिया मुसलमानों को आखिरी दफा इस गजबे से, क्योंकि इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी जंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो यूं लगता है कि अल्लाह ताला ने अभी आखिरी बार आजमाना था कितने पानी में, और अब बहुत सारे लोग और भी मुसलमान हुए, तो सबकी एक आजमाइश हो जाए, एक टेस्ट हो जाए, क्योंकि बाद में तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। देखिए 9th हिजरी में तो हम पहुंच ही चुके हैं, 10th में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब हज हुआ, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है। तो इससे पता चलता है कि आप थोड़ा ही टाइम रह गया और लोग ऑन देयर ओन हो जाएंगे इसके बाद, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं है, तो फिर अब इनके ईमान का इम्तिहान लिया जाए, अब इनको इस इम्तिहान में डाल के और कुंदन बना दिया जाए और सख्त जान कर दिया जाए। तो ये जो लश्कर था, ये सबसे बड़ा लश्कर था जो कि मुसलमानों ने आज तक कभी तैयार किया था, बल्कि अरब की तारीख में भी नहीं मिलता इतना बड़ा लश्कर, 30,000 का लश्कर, इतना ज्यादा था। और जाहिर है जब इतना बड़ा लश्कर होगा तो फिर सवारियों का इंतजाम भी करना होगा, खाने पीने का भी, रास्ते में जाने का, सारी मतलब लॉजिस्टिक्स देखने होंगे। और जैशुल उसरा, मैंने जैसे आपको बताया, इसका नाम है सख्ती का, जो मुश्किल का जो लश्कर, तो ये टाइमिंग भी ऐसा था कि गर्मियों के, सख्त गर्मी के दिन थे, सख्त गर्मी के, यानी जुलाई का एंड था, अगस्त शुरू होने वाला था, और सफर इतना लंबा था, यानी ये वो सफर था जिसमें तकरीबन यानी 1,000 मील दूर, ये देख लेना 778 किलोमीटर हो गया, तो इतना ही तकरीबन 1,000 मील तक का सफर हो गया, यहाँ से माइल्स में कन्वर्ट करें तो। अब इतना लंबा सफर करना है और सख्त तरीन गर्मी है, और उसके अंदर वक्त भी ऐसा है कि जिसमें फल पक रहे हैं, फल यानी आप उतारने का वक्त है, और उस जमाने में ऐसे नहीं होता था कि कोई आपकी सैलरी लगी हो और हर महीने कुछ आ रहा है, बल्कि ऐसा होता था कि एक दफा साल भर का फल उतार लेते थे, फिर उसके ऊपर ही गुजारा होता था, तिजारत होती थी, ये सब चीज होती थी, उनको नहीं पता होता था कि कल कुछ और मिलेगा या नहीं, ये ही था जो उनका बेसिक यानी पूरे साल का एक तरह से खर्चा होता है। और ये अब जाएंगे अगर, तो जाना और आना ये कोई 1 महीने का तो काम था ही था ना, और फिर वहां पे लड़ना भी है, तो कितने दिन लग जाते हैं, महीने से ऊपर का तो काम हो ही गया, इधर खड़ी फसल है जिसपे सारा साल मेहनत की हुई है, तो इसका क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें थी जो कि इसकी बैकग्राउंड में है, जिसकी वजह से ये जैशुल उसरा कहलाया गया। और अब इसकी वजूहात देखते हैं क्यों ये हुआ था। बुक में देखें, मारका मौता का असर रूमी कुव्वत के हक में अच्छा ना था। आपको याद है मारका मौता, मौता की जो जंग हुई थी उसमें क्या हुआ था कि मुसलमान जो थे हार्डली अपने आप को बचा के आए थे, और दूसरी तरफ जो रूमी लश्कर था वो कह नहीं सकते कि वो फतह याब हो गया था, इसलिए कि इतने थोड़े जो उनके लिहाज से वो उधर लाखों थे और इधर ये हजारों में थोड़ा सा छोटा सा लश्कर था मुसलमानों का, उसको खत्म ही नहीं कर सके, और वो बच के भी निकल गए, ये एक तरह की उनकी शिकस्त थी ना, और मुसलमानों की भी फतह नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर ही बात है वो तो हार्डली अपने आप को बचा के ही आए थे। तो मारका मौता का असर जो था वो रूमी कुव्वत के हक में अच्छा ना था, सिर्फ 3,000 मुसलमानों ने 2 लाख रूमी ताकत को दबाने में जो कामयाबी हासिल की थी, इसका शाम के पड़ोसी अरब कबाइल पर जबरदस्त असर हुआ था, और अब ये कबाइल आजादी और खुदमुख्तारी के ख्वाब देख रहे थे, लिहाजा रूमियों ने एक फैसला कुन जंग की जरूरत महसूस की जिसमें वो मुसलमानों को इनके अपने घर मदीना मुनव्वरा के अंदर ही साफ कर दे। और इसी के अंदर ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि गस्सानी का, आप ये वर्ड याद रखिएगा कि गस्सान जो थे ये नॉर्थ में थे और ये रोम की सरहद के साथ इनके कबीला था। ये भी क्रिश्चियनी क्रिश्चियन अरब थे, क्रिश्चियनिटी इन्होंने कबूल की हुई थी और रूमियों के साथ थे, यानी उनके एलाइज थे। पहले भी आपने देखा था ना, उनके एलाइज थे। तो इनका बड़ा खतरा इस वक्त हो रहा था कि ये किसी वक्त भी हमलावर हो जाएंगे। जब भी तो हजरत उमर फरमा रहे हैं कि वो क्या गसानियों ने हमला कर दिया, यानी इतना खतरा था। तो इससे पहले कि वो हमला करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये चीजों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यानी उनके ऊपर पहले हमला कर दें। ठीक यानी हालात काफी मुश्किल थे ना उस वक्त के। ये रोम आप सोचे सुपर पावर था, अब वहां से वो अगर हमला करता है तो ये आसान नहीं होगा। और अंदर भी यहाँ पे मुनाफिकीन भी थे मदीना में अभी तक, और उन वो भी लाला के अफवाहें फैला रहे थे कि अब रूमी आ रहे हैं और वो ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है। हालांकि वो देख चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान में कामयाब हुए हैं और अभी तक कोई भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सका। इसके बावजूद उन्होंने ये उम्मीद बांध ली थी कि हो सकता है कि अब कोई कामयाबी हो जाए और अब वाकई रूमी आ ही जाए, क्योंकि वो अंदर तो उनके सीनों के अंदर तो जो नफरत थी ना इस्लाम से, तो ये उनका साथ साथ वो भी एक यानी अंदर अपने भी एक दुश्मन बैठा हुआ और बाहर से मुसलमानों को खटका लगा हुआ है कि अब आए और अब आए। और इस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फैसला फरमाया कि हम निकलेंगे और हम जाके खुद जंग करेंगे। और आपको पता है ना कि वो शुरैहबील बिन अमर गसानी के हाथों जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर जो हजरत हारिस बिन उमैर अजदी थे उनको शहीद कर दिया गया था, उसने शहीद किया था। ये पहले हम बात जंगे मौता के मौके पे पढ़ चुके हैं कि जब वो गए थे और वो फिर पैगाम लेकर गए थे और फिर उसने उनको शहीद कर दिया था। तो ये गसानी कबीला पहले से मुसलमानों के साथ यानी एक मतलब एक राइवलरी रखी हुई थी, दुश्मनी रखी हुई थी और एक खतरा था कि बस अब किसी वक्त भी ये हमला कर देंगे। और दूसरा, जैसे हम सूरह तौबा से भी देखते हैं कि अल्लाह ताला का ये फैसला था कि मुसलमान अब निकले, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला आजमाना चाहता था मुसलमानों को। तो अब देखें एग्जैक्ट 6 महीने बाद, ताइफ अभी 6 महीने पहले हुआ था और ये सब, और 6 महीने बाद अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली जंग की तैयारी करें। और आप ये भी देख रहे हैं कि घर में भी क्या चीज चल रही है, घर में क्या चीज अभी चली है, बाहर का भी देखना है। आप हम अपने आप को देखें, बाज दफा हम इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि हम तो डिप्रेशन का ही शिकार हो जाते हैं कि आए मुझे तो कहीं चैन ही नहीं मिल रहा। अब तो लगता था ना कि अभी देखें मक्का फतह हो गया, ये सब हुनैन वगैरह और ये कभी करीब करीब के ये जो कबाइल हैं अब ये सब चीज ठीक हो गई है, अब चैन से बैठे, अब वेकेशन टाइम आ गया। अब वेकेशन टाइम क्या आया कि वहां से आके बजाय इसके कि अब फल तोड़ते, अब बैठते और आराम करते, उससे भी ज्यादा मुश्किल एक चीज आ गई जिनके साथ कभी लड़े नहीं है। सोचे रोमन्स के साथ ये कभी नहीं लड़े थे, यानी ये जो पिछले जंगे मौता हुई थी वो तो आपको पता है ना, थोड़े से ही गए थे और लड़के आ गए थे और वो कोई फैसला कुन तो चीज थी नहीं, वो ऐसा सच कोई ऐसी जंग नहीं हुई थी। तो एक तो ऐसा दुश्मन, ऊपर से इतना गर्मी का वक्त, ऊपर से फल पक चुके हैं, सफर लंबा है, ये सारी चीजें, और अभी तो वहां से आए हैं तो किस वक्त हमें चैन मिलेगा। यानी यार एक बंदा पूछता है ना कि किस वक्त चैन मिलेगा, हम तो इस्लाम में का आए तो हमारे तो मुश्किल ही मुश्किल है। हम तो छोटी छोटी बातों पे शिकायत करने लगते हैं कि जबकि हमें इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी भी नहीं दी होती तो फिर ऐसे लगता है कि हाय पता नहीं इस्लाम तो इसकी वजह से हमें कितनी मुश्किल आता है, यानी जैसे ये एक मसला है हमारे लिए, हम मुसलमान है तो अब ये हमारे लिए जाने में कहीं मसला, हमारे लिए बाहर निकलने में मसला, हमारे नाम में मसला, हमारे कहीं काम करने में मसला। तो हम इतनी ज्यादा इस चीज को एक प्रॉब्लमेटिक समझते हैं ना। अगर उनकी जिंदगियां देखें तो उनके तो आए दिन मसाइल थे। और ये देख लें कि जब इंसान के घर में भी अभी कोई मसला चल रहा हो तो वो कहता है कि अब तो मैं इतना थक गया हूँ कि अब तो मेरे में से बाहर कभी नहीं सकता, अब डिप्रेशन में चले गए, अब कोई ऐसे हो गए, हमारे आसाब इतने कमजोर हैं। लेकिन उधर देखें अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसाब कमज़ोर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत ऐसी फरमाई थी कि शुरू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने इतना सारा कुछ गुजरा था कि इससे अल्लाह ने उनको टफ बना दिया था, वरना ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। और हम सोचते हैं ना कि ये टफ चीजें आए, ये हमारे लिए मुश्किल मसले क्यों ऐसे मेरे ऊपर टफ हालात हैं। बाज दफा टफ हालात इंसान को मजबूत करते हैं, उसको चट्टान बना देते हैं, फिर तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, वो खड़ा रहता है अपनी जगह। अगर इंसान छुई मुई हो सारी जिंदगी, उसने कुछ नहीं देखा, जैसे कि हमारे अल्लाह ताला माफी फरमाए हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, ना उन्होंने कभी जर्म्स देखे, ना उन्होंने कभी गंदगियां देखी, ना कोई गटर नाले देखे, ना मक्खियां देखी, ना कुछ देखी। अब जरा सी उनको कोई मक्खी मच्छर मिल गया तो बस फौरन बीमार हो गए, और फौरन उनको वो चीजें हो गई कि वहां के बच्चे आराम से घूम रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये देखे ना कि टफ चीज इंसान को, जो टफ हालात होते हैं, सख्त हालात होते हैं, वो उसको मजबूत कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हालात के अंदर, अब 6 महीने पहले देखें क्या थी कि इतना कुछ था, इतना कुछ था कि लोगों को दे रहे हैं, किसी को 300 ऊंट, किसी को इतने, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बचा बचा के अपने लिए नहीं रखे हुए थे, एक पैनी भी अपने लिए नहीं बचाई हुई थी। यहां पे आप इतनी बड़ी जंग के लिए निकलना ऐसे ही तो नहीं निकला जा सकता, उसके लिए तैयारी चाहिए। तो रोमियों से टकराव के लिए मुसलमानों की तैयारी, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तैयारी का इल्म हुआ तो आपने हर जगह मुसलमानों को निकलने की मुनादी कराई और गजवे की जहद का वाजे तौर पे ऐलान फरमाया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे तौर पे बताया कि हम तबूक के लिए जा रहे हैं, ताकि लोग मुकम्मल तैयारी कर लें, क्योंकि मुकम्मल तैयारी किसकी, जाने की भी। इसका मतलब है कि आपको जाने के लिए भी तैयारी चाहिए और अपने पीछे घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी करके जानी पड़ेगी। जैसे कि बुखारी में आता है, काब बिन मालिक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंगी मुहिम के लिए निकलते थे तो अपने टारगेट के बारे में साफ क्लियर अल्फाज इस्तेमाल नहीं फरमाते थे, मुबहम अल्फाज देते थे। यानी जैसे मसलन मक्का की तरफ जाना है तो पहले दूसरी डायरेक्शन में गए, फिर उसके बाद वहां से टर्न लेके उधर को गए, यानी इसको मुबहम रखते थे। लेकिन अब की दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, वाजे कर दिया था, इसलिए क्योंकि गर्मी इंतहाई शदीद थी, सफर बहुत लंबा था और रास्ता जो था बियाबानों सहराओं जंगलों पर मुश्तमिल था, और दुश्मन की फौज तादाद में भी और महारत में भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए जरूरी था ताकि मुजाहिदीन अपनी तैयारी उसके मुताबिक करें। तो अब देखते हैं कि क्योंकि जमाना सख्त गर्मी का था, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे तौर पे ऐलान किया था तो ये उसकी वजूहात है। लंबा सफर था, लोग तंगी और कहत से दो चार थे और अब फल पक चुके थे और साए खुशगवार लग रहे थे और लोग इसमें कयाम पसंद कर रहे थे। अब देखें साए घने हो गए, फल पके हुए हैं, यानी एक वो वाला टाइम है कि बाकी टाइम पे तो उस तरह का फ्रेश फल मिले नहीं मिले, लेकिन इस टाइम पे अपने बागों के फल पके में, इस वक्त वो पिकनिक टाइम जिसको कह सकते हैं आपके, वो है कि किसान के लिए या जो कोई बाग वाले होते हैं जिनकी आमदन बाग से होती है उनके लिए तो पार्टी टाइम वो होता है ना जिस वक्त उनकी फसल पक के तैयार हो जाए। अब उनका जो सारी मेहनत का समर अब उनके सामने आया, उस वक्त छोड़ के चल पड़े, और गर्मी इतनी ज्यादा, सायों में मजा आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सरवत को तंग दस्तों को की तैयारी की तरगीब दी। क्या मतलब, यानी जो मालदार थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेट किया कि जो फकीर हैं गरीब हैं उनकी तैयारी में उनकी हेल्प करें और उनसे जो कुछ बन सका ले आए। यानी ये वो वक्त है जिसमें वो मशहूर वाक्य आता है जो अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के मुकाबले का था, नेकी में मुकाबले का। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपना सारा माल ले आए जो 4000 दिरहम था। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अपने घर वालों के लिए भी कुछ बाकी छोड़ा है। देखिये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर जब सामान लेकर आए तो उनसे भी ये नहीं पूछा कि आप कितना सामान लेकर आए हैं, कितने हैं ये, ये पूछा अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर वालों की भी फिक्र थी। ऐसा नहीं कि तुम सब ले आओ, कोई जरूरत नहीं अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आने की, ऐसा नहीं था। उन्होंने फरमाया कि आधा घर वालों के लिए छोड़ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्यों आधा छोड़ के आए हो, उनको ऐसे ही रहने देते? क्या तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं? नहीं, ये नहीं भरोसा होता। वो फरमाया कि आधा छोड़ आए। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो उनसे जब पूछा गया कि बाकी क्या छोड़ा है, अर्ज की कि उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। बस इतना भरोसा है कि बस अल्लाह और उसका रसूल काफी है, कुछ इंतजाम उनका भी हो ही जाएगा, लेकिन मैं सारा ही मान ले आऊं। क्योंकि इससे आप ये भी अंदाजा कीजिए कि उस वक्त कितनी ज्यादा जरूरत थी और कितने ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मोटिवेट किया हुआ था कि आप लोग लेकर आओ माल। और यहां से ये भी मालूम होता है कि ये कोई जो फंड रेजिंग करनी किसी मस्जिद के लिए या किसी इदारे के लिए या किसी दीनी फलाह के काम के लिए, ये कोई गैर इस्लामी बात नहीं है कि क्यों लोगों से मांग रहे हैं। नहीं, ये गैर इस्लामी बात नहीं, जाहिर है जब जरूरत होगी तो लोगों से ही कहा जाएगा ना, मुसलमानों से ही कहा जाएगा, किसी और से तो नहीं जाके मांगा जाएगा। तो उसमें लोग कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगा सकते हैं कि कोई अपने घर का सारा ही माल उठा के ले आए, यानी कितनी ज्यादा कुर्बानी उनकी तरफ से थी और मुसलमानों को कितनी ज्यादा जरूरत थी। और हजरत उमर ने इस मौके पर सोचा था कि आज मैं जरूर अबू बकर सिद्दीक से मुकाबले में बढ़ जाऊंगा, लेकिन जब ये देखा तो फिर फरमाया कि मैं कभी नहीं इनसे मुकाबले में बढ़ सकता। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नेकी के काम होते हैं ना, उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ना, साबिकू सारिऊ, ये है कुरान में अल्फाज आते हैं कि तेजी करो, आगे बढ़ो एक दूसरे से नेकी के अंदर, जन्नत के लिए तेजी दिखाओ। और कामों के लिए नहीं फरमाया कि हाँ नहीं तेजी दिखाओ, आपके जॉबों के लिए तेजियां दिखाया करो, स्कूल जाने के लिए तेजी दिखाया करो, इसके लिए नहीं, नेकी के लिए तेजी दिखाओ, जन्नत के लिए तेजी दिखाओ, मुकाबले करो एक दूसरे के साथ। तो सहाबा इसमें मुकाबले करते थे, किसने किसको कितना कुरान याद है, कौन कितना कुरान पे अमल कर रहा है, कौन कितनी नमाजें पढ़ता है, कैसे नमाजें पढ़ता है, कौन सदका खैरात कितना करता है, मैं उससे ज्यादा आगे बढ़ जाऊं। आज तो ये मुकाबले ही नहीं है ना, आज मुकाबले हैं कपड़ों के, जूतों के, घरों के, गाड़ियों के, इनके मुकाबले। नेकी का मुकाबला करने का किसी को नहीं शौक है कि चलो इसने इतना किया, मैं इन्हें इससे ज्यादा करना है, मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ जाऊं। ये मुकाबले कहां चले गए? अगर मुकाबले होते भी हैं तो वो ये हाल होता है मुकाबलों में कि हसद करने लगते हैं। ये कौन से मुकाबले में कि दूसरा पीछे हो जाए तो फिर मैं आगे मैं बढ़ जाऊं, दूसरे को पीछे करके उसकी टांग खींचूं मैं, हसद, ये कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने उनसे हसद तो नहीं किया, ये क्यों लिया इतना, ये इतने बड़े अपने नंबर बना लिए और मैं पीछे हो गया, ऐसा कहीं पे भी नहीं। हमें अगर मुकाबला करना ही आता तो फिर हसद करने लगते। मुकाबले करने तो इनसे सीखें कि कैसे मुकाबले होते हैं। कहीं नहीं हम देखते हैं कि उनको एक दूसरे के साथ कोई इस तरह की दुश्मनी हो गई और अब एक आंख नहीं बातें, अब उनको वो बुरे लगने शुरू हो गए क्योंकि वो क्यों ज्यादा ले आए थे और उनके नंबर क्यों ज्यादा बन गए आगे। तुम पता नहीं ज्यादा खुशामद करना चाहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के अंदर ज्यादा होना चाहते हो, इसलिए तुमने कर। अगर ऐसा होता तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाद हज़रत उमर को खिलाफत के लिए ना चूज करके जाते, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि मुकाबला करना है तो कैसे करना है, कैसे होते हैं हेल्दी मुकाबले नेकी में। फिर हम देखते हैं आगे, हजरत उस्मान बिन अफ़ान ने कहा जाता है कि 10,000 दीनार पालान और कजावे समेत 300 ऊंट और 50 घोड़े दिए। ये हमें पता चलता है कि हजरत उस्मान ने भी इसमें इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ये तंगी की का समझ लें वक्त था ना, तंगी की हालत में ये लश्कर तैयार करना शुरू हुआ था। तो उन्होंने 1,000 दीनार जो थे अपने कपड़े में डाले हुए थे, यानी जैसे कमीज थी ना अपनी, उसके अंदर 1,000 के 10 दिया पे आता 10,000 दीनार डाले गए थे, दीनार सोने के सिक्के होते हैं। तो उन्होंने अपनी झोली में डाले गए थे, कोई हो सकता है कोई थैला वगैरह नहीं मिला होगा या कुछ है, आते ही उन्होंने ये सारी रकम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दीनारों को हाथ में लेके उलट पुलट कर रहे थे, फरमा रहे थे अफ़ान के बेटे को आज के बाद कोई फिक्र करने की नहीं जरूरत, चाहे आज के बाद कोई भी ना अमल करे, आज के बाद चाहे कोई भी अमल ना करे, उसके लिए ये काफी है, यानी उसको कोई चीज भी अब शर नहीं पहुंचाएगी। मुस्नद अहमद में रिवायत, हजरत उस्मान के जब घर का मुहासरा किया था ना साजिशियों ने, बागियों ने, तो उस वक्त वो इसी बात को मेंशन करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये बात फरमाई है। हजरत इब्ने अब्बास भी उनसे कहते थे कि देखो तुम इनके ऊपर इतना तान कर रहे हो कि इन्होंने ऐसे किया ऐसे किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि कोई इनको तो परवाह करने की जरूरत नहीं, आज के बाद कुछ भी करें बस मतलब लेकिन इनको जन्नत मिल गई है। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने, इनका काफिला एक गया हुआ था शाम की तरफ, तो जब इनका वो काफिला आया तो बमा ऊंटों के और साजो सामान के और घोड़ों के और सब चीजें इन्होंने दे दी अल्लाह के रास्ते में। और कहा जाता है उन्होंने 900 ऊंट और 150 घोड़े दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया आज के बाद उस्मान जो भी करें उन्हें नुकसान नहीं होगा, ठीक है, जो भी करें। कितनी ये बड़ी बात है, कितनी ये बड़ी बात है। ये खुशखबरियां थी जो सहाबा को दुनिया में मिल गई, जो जन्नतियों को जन्नत में जाके मिलेंगी ना, कि आपके बाद अल्लाह ताला तुमसे राजी हो गया, कभी तुमसे नाराज नहीं होगा, वो उनको वहां मिलेंगी, इनको दुनिया में मिल गई। कि आज के बाद कुछ भी करो कोई नुकसान नहीं तुम्हारे लिए, कोई शर नहीं, कोई बुराई नहीं तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ 200 उकिया यानी 8,000 दिरहम चांदी लेकर आए। दिरहम चांदी के सिक्के होते हैं। आपको पता है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बहुत मालदार सहाबी थे, लेकिन ये भी मुहाजिर थे। जब हिजरत करके आए थे तो उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था। जब याद है इनके अंसारी भाई ने इनसे फरमाया था कि मेरी दो बीवियां, इनमें से जो आपको पसंद है मैं उसको तलाक दे देता हूँ, आप उसे शादी कर लें, मेरे इस तरह दो बाग हैं आप उसमें से ले लें, इस तरह से करके। तो इन्होंने फरमाया था नहीं मुझे बस बाजार का रास्ता दिखा दो। हजरत अब्बास बहुत सारा माल लेकर आए। हजरत तलहा, साद बिन उबादा, मोहम्मद बिन मुस्लिमा वगैरह भी माल लेकर आए। हजरत आसिम बिन अदी 90 वसक 13,500 किलो खजूर लाए। बकिया सहाबा ने भी अपनी अपनी बसात के मुताबिक सदकात की लाइन लगा दी, यहां तक कि किसी ने एक मुद, दो मुद, ये मुद भी पैमाना होता है, एक सदका किया, चूंकि वो इससे ज्यादा की ताकत ही नहीं रखते थे। औरतों ने भी जो कुछ हो सका जेवरात तक भेजे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। और इसमें क्या हुआ था कि एक और सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, हजरत अबू मसूद अंसारी फरमाते हैं कि जब हमें हुक्म हुआ कि अल्लाह के रास्ते में दो, तो हम बोझ उठाकर मजदूरी करने लगे। चुनाचे हजरत अबू अकील रजील तला निसफ सा, निसफ सा कितना होगा, 1 किलो के करीब समझ लें, खजूरें लेकर आए। जबकि एक और सहाबी जो मालदार थे वो कहीं ज्यादा लेकर आए। दोनों ने यानी दिया, एक ने इतनी सी, यानी समझ लें कि एक साहबी ऐसे थे कि उन्होंने सारी रात एक यहूदी का राहट चलाया, यानी पानी निकालने के लिए होता है ना वो, तो सुबह को उसने इतनी सी खजूरें सिर्फ दी। अब वो सारी रात की मेहनत करने के बाद, मजदूरी करने के बाद जब इतनी सी कमाई थी ना, वो ला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी कि इनमें से एक हाथ ये मेरे बाल बच्चों के लिए खजूर है और एक हाथ में ये आपको देता हूँ अल्लाह के रास्ते में। तो इसके ऊपर मुनाफिकी ने बहुत बातें बनाई, तंग दस सहाबा आपसे सवारी तलब करने। अच्छा ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी बहुत सारी डिटेल है इसमें और काफी इसके अंदर बातें हैं। वो मुनाफिकी को मौका मिल गया उसके बाद हंसने का कि ये क्या, ये इतनी सी खजूर की अल्लाह को जरूरत है कि इतनी सी खजूर ले आए, और ये क्या, ये इतनी ज्यादा ले आए, लेकिन यहाँ पे आता है कि यानी 13,500 किलो खजूर, तो ये क्या बहुत यानी शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है ये बस शोखियां। इस किस्म की बातें देखें मुनाफिकीन किया करते थे। आज भी फंड रेजर्स पे ऐसी बातें होती हैं, किसी ने कम दिया तो उसका मजाक, किसी ने ज्यादा दे दिया तो पता नहीं शो मार रहा है, दिखावा है बस, रियाकारी है और कुछ नहीं है। यानी करना कुछ नहीं होता, मुकाबला नहीं करना होता कि हम नेकी में हम आगे बढ़ जाए, उल्टा दूसरों के ऊपर बातें करना। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक निशान लगा लें कि औरतों ने जेवरात भेजा, फिर हमने यहाँ तक बस पढ़ा, क्योंकि जो सदकात अल्लाह के रास्ते में जो दिए गए वो उनकी डिटेल। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।